शांति। 12/6/77 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं के प्रति ये महावाक्य उचारे। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्मेंद्रिय के प्रति महिमा में नयन कमल मुख कमल हस्त कमल कहकर गायन करते हैं। तो यह किस समय की स्थिति का आसन है? इस ब्राह्मण जीवन का। अपने आप से पूछो, हर कर्मेंद्रिय कमल समान बनी है? नयन कमल बने हैं? हस्त कमल बने हैं? कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त देह को देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं। अकेला नहीं होता है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते चाहे लौकिक चाहे अलौकिक साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। जो गुण रचना में है तो मास्टर रचता में वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो वा कभी कभी स्थित होते हो? सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अपने आप को देखो, 5 विकार 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट में मुक्त हुए हैं? लिप्त आत्मा हो व मुक्त आत्मा हो, आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे जैसे कराएंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो? सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भुलाते हो? गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव पापा दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति है, दूसरा कोई संबंध, स्नेह, संयोग व प्राप्ति व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है? है कोई व्यक्ति व वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली? जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो। वह कहते हो दूसरा कोई नहीं परंतु है, कोई है वह सब समाप्त हो गए। अगर है तो गीत क्यों गाते हो? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो, वहां कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना बोलना करना सब एक हो, अंतर न हो, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है। यह अज्ञानियों के बोल है, क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है। लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है, इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना, सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड बनने का समय कहते हो, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन है, क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूरत हो। ऐसे आधार मूरत समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे या आधार मूरत कहेंगे? तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूरत आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं, सिवाय एक बाप के आधार मूरत किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली। सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकते। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस में चले जाते अर्थात दूर चले जाते। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कोई न कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है। अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे कई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है। शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता। उसका कारण अवश्य एक सहारे के बजाय कोई न कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है अर्थात हलचल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो। चेक करना आता है? चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं तो बुद्धिवान आत्माओं के संयोग से अपनी चेकिंग करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया है। वाह, यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा हरेक को प्राप्त है। क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। समझा क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्मेंद्रियां कहां तक कमल बनी है? ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित न रहना अर्थात कहां न कहां आकर्षित होते हैं, तब हर्षित नहीं रह सकते। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो। कहना और करना एक करो। वायदा करने वाला नहीं लेकिन निभाने वाले बनो। अच्छा, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूरत समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसे समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पाठियों से पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित है। युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में, विजय रत्न सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। स्वप्न में भी दुख का दृश्य न आए अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता न आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है, कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है। सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होते हैं, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख भी कहते हो। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है तो दुख कहां से आया? जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता, तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया है। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर न आए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई, आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़ चले। लंगर उठ गया है ना, अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई है। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त है या कुछ रही है? उसकी परख अथवा निशानी है खींचावट। अगर बंधी हुई रस्सियां है तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युग हुए नहीं ना। फिर तो कलयुग संगम के बीच के हो गए, न यहां के न वहां के। ऐसे की अवस्था अब क्या होगी? कब कहां कब कहां? बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे, भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो, सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ, इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सतयुगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं होगा। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या? तो वह संस्कार यहां ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी न हो। प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है, सजा के संस्कार बन जाए। उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है? 5000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। विघ्न आता है उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। आए और चला जाए, विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया। विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना देंगे, इसीलिए आया और गया। आधा कल्प माया मेहमान है, इसीलिए तरस तो नहीं पड़ता। अब तरस मत करो, अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी है, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाए, उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो, वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ, रोज नया अनुभव हो, तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो। अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना वह अभी कम है, सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता। सेवा करते हैं, यह प्रभाव है, लेकिन निरंतर योगी है, वो स्टेज पर आओ, इसकी इन्वेंशन निकालने की धुन में लगो। जो किसी ने न किया है वह मैं करूं, यह रेस करो, याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं उनको चांस अच्छा है, और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। इससे निर्विघ्न सहज होते, वातावरण चेंज होता है, सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो, वातावरण में मत आओ जो लहर फैले। अच्छा, ओम शांति।